नमस्कार, मी तेजल आपल्या सर्वांचे चालू घडामोडी या सत्रात सहर्ष स्वागत करते. आजची पहिली बातमी, बिपरजॉय चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर हवामान विभागानं गुजरातच्या कच्छ आणि सौराष्ट्र भागाला मुसळधार पावसाचा आणि मच्छीमारांसाठी समुद्रात न जाण्याचा धोक्याचा इशारा दिला. हे चक्रीवादळ येत्या 15 जून रोजी गुजरातच्या कच्छ आणि सौराष्ट्र मार्गे पाकिस्तानच्या कराचीकडे जाईल. या दृष्टीनं हवामान विभागानं गुजरातच्या सर्व बंदरावर धोक्याचा LW4 इशारा दिला. या चक्रीवादळामुळे 120 ते 135 किलोमीटर वेगाने वारे वाहणार असून त्याचा वेग 145 किलोमीटर प्रतितास जाण्याची शक्यता आहे. या वादळाचा फटका द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जुनागड आणि मोरबी या जिल्ह्यातल्या समुद्र किनाऱ्यांना बसेल. हे चक्रीवादळ कच्छच्या मांडवीपासून ते पाकिस्तानच्या कराचीपर्यंतच्या समुद्र किनाऱ्यांवर थडकेल. या काळात मच्छीमारांनी समुद्रात जाऊ नये असा कठोर इशारा देण्यात आला आहे. पुढील बातमी, लेखापरीक्षण पद्धतीत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याचं आवाहन भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक गिरीशचंद्र मुर्मू यांनी केलं. ते पणजी इथं G20 आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या विषयावरील सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था या प्रोत्साहन देणाऱ्या समूहाच्या सुप्रीम ऑडिटच्या दुसऱ्या शिखर परिषदेत बोलत होते. लेखापरीक्षण धोरण निर्मात्यांनी सावधगिरी बाळगून याचा वापर करण्याची गरज असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं. लेखापरीक्षण सुशासन, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञानाचा आणि ब्लू इकॉनॉमीच्या ऑडिटमध्ये सुप्रीम ऑडिट इन्स्टिट्यूशन अर्थात साईची भूमिका महत्वाची असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं. यानंतरची बातमी, महाराष्ट्राच्या नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यात हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघातात 4 जणांचा मृत्यू झाला तर 4 जण जखमी झाल्याची घटना घडली. इनोव्हा गाडीवरील चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं कार महामार्गाच्या मध्यभागी असलेल्या संरक्षण भिंतीवर आपटल्यानं हा अपघात झाला. जखमींना सिन्नर येथे प्राथमिक उपचारानंतर तातडीनं शिर्डी इथं पुढील उपचारासाठी हलवण्यात आलं. यानंतरची बातमी, वकिलांनी सर्व प्रकारची न्यायालयीन प्रकरणं ऑनलाईन पद्धतीनं दाखल करणं सर्वोच्च न्यायालयानं बंधनकारक केलं. त्यामुळे वकिलांना सहजरित्या ई फायलिंग करणं सोपं व्हावं यासाठी महाराष्ट्र आणि गोवा बार काउन्सिलच्या वतीनं जिल्हा आणि तालुका न्यायालयातून ई फायलिंग सेंटर सुरू करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातलं अशा प्रकारचं पहिलं ई फायलिंग सेंटर सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयात सुरू झालं. या सेंटरचं उद्घाटन सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश SJ भारुका आणि बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र तसंच गोव्याचे अध्यक्ष विधिज्ञ मिलिंद पाटील यांच्या हस्ते झालं. पुढील बातमी, सर्वसामान्यांना सुखी आनंदी आणि सुरक्षित करण्यासाठी सरकार अनेक योजना आणत आहे पण माहिती अभावी त्यांना माहिती मिळत नाही. पार्श्वभूमीवर केंद्रीय संचार ब्युरो जनतेपर्यंत सरकारच्या योजनांची माहिती पोहोचवत आहे. पुण्यातल्या केंद्रीय संचार ब्युरो प्रादेशिक कार्यालयाच्या वतीनं आयोजित फिरत्या मल्टीमीडिया वाहन प्रदर्शनाचं उद्घाटन करताना चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती दिली. वारीत चालणाऱ्या लाखोंच्या समुदायाला या प्रदर्शनातील दृश्य स्वरूपातील माहिती चांगली कळेल. वारीमध्ये सहभागी झालेली ग्रामीण जनता तहसीलदार तलाठी यांना योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी विचारणा करेल अशी आशा पाटील यांनी व्यक्त केली. केंद्र सरकारच्या विविध विकासात्मक उपक्रमांची माहिती कलापथक सांस्कृतिक सादरीकरणातून मिळेल. या फिरत्या प्रदर्शनाला वारकरी आणि भाविकांनी भेट द्यावी असं आवाहन केंद्रीय संचार ब्युरोचे उपसंचालक निखिल देशमुख यांनी केलं. पुढील बातमी, G20 विकास मंत्र्यांची बैठक उत्तर प्रदेशातील वाराणसी शहरात सुरू झाली. केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री Dr. S. Jayshankar हे 13 जून पर्यंत सुरू राहणाऱ्या या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आहेत. जयशंकर यांनी युरोपियन युनियनचे आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आयुक्त, संयुक्त राष्ट्र परिषदेचे व्यापार आणि विकास विषयक सरचिटणीस, जर्मनीचे आर्थिक सहकार्य आणि विकास मंत्री, ऑस्ट्रेलियाचे विकास मंत्री यांच्यासह अनेक मान्यवरांची भेट घेतली. या परिषदेत सुमारे 200 प्रतिनिधी सहभागी आहेत. पुढील घडामोड, भारत आणि बांगलादेश यांच्यात सीमा सुरक्षा दलाच्या महासंचालक स्तरावरची 53वी सहकार्य परिषद नवी दिल्लीत सुरू झाली. 4 दिवसांच्या या परिषदेत भारताच्या सीमा सुरक्षा दलाचे महासंचालक Dr. Sujoy Lal थाओसेन आणि बांगलादेशच्या सीमारक्षक दलाचे महासंचालक मेजर जनरल AKM नाजबुल हसन यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होणार असून त्यात दोनही देशांच्या सीमांशी निगडीत प्रश्न, सीमापार गुन्हेगारी कारवाया आणि दोन्ही देशांच्या सीमा सुरक्षांमध्ये अधिक चांगलं परस्पर सहकार्य निर्माण होण्यासाठी करायच्या प्रयत्नांबाबत चर्चा होईल. वळूया पुढील बातमीकडे. ISKP अर्थात इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोव्हिन्स या बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित 3 तरुणांना गुजरात दहशतवाद विरोधी पथकानं अटक केली. हे तरुण गुजरातमधील पोरबंदरच्या सागरी मार्गानं बाहेर पडून इराणमार्गे अफगाणिस्तानात जाण्याच्या तयारीत होते. ISKP कमांडोच्या सूचनेनुसार अफगाणिस्तानच्या इस्लामिक अमिरातमध्ये दहशतवादी कृत्यात ते सहभागी होणार होते. गुजरातच्या ATS ही माहिती दिली. या तरुणांशिवाय माहितीच्या आधारे सुरतमधून एका महिलेलाही अटक झाली. हे 3 तरुण काश्मीरचे आहेत. यांच्याकडून फोन, टॅबलेट,
धारदार शस्त्र जप्त करण्यात आली. या व्यक्तींच्या क्लाउड स्टोरेजमध्ये प्रवेश करून ISKP बॅनर, झेंडे असलेले फोटो आणि शपथ घेणारे व्हिडिओ तसंच ऑडिओ सापडले. त्यांचा हँडलर अबू हमजाच्या सांगण्यावरून ते कट्टरपंथी बनले. इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोव्हिन्स या संघटनेत सामील झालेले तरुण होय असं चौकशी केल्यानंतर उघड झालं. क्रीडा घडामोड. भारताच्या महिला ज्युनियर हॉकी संघानं जपानमधल्या काकामिग हारा इथं 4 वेळा विजेता ठरलेल्या दक्षिण कोरियाच्या टीमला 2-1 हरवून आशिया चषक जिंकला. या सामन्यात 22व्या मिनिटाला अनुच्या पेनल्टी कॉर्नरच्या गोलमुळे भारताची परिस्थिती बदलली, पण त्यानंतर 3 मिनिटांनी पार्कसे ओनने गोल करत बरोबरी साधली. त्यानंतर पुढे 41व्या मिनिटाला निलमननं गोल करत सामन्यात आघाडी घेतली. भारताच्या बचाव फळीनं ही आघाडी टिकवून ठेवत आशिया चषकाला गवसणी घातली. यानंतरची बातमी. नैऋत्य मोसमी पाऊस राज्यात दाखल झाला आहे. दक्षिण कोकणातला काही भाग, दक्षिण मध्य महाराष्ट्राचा काही भाग, संपूर्ण गोवा तसंच कर्नाटक, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशाचा काही भाग मान्सूनने व्यापला. मुंबई शहर आणि परिसरात आभाळ अंशतः ढगाळ आहे. मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता असून या काळात अधूनमधून वादळी वारे वाहतील. वाऱ्याचा वेग ताशी 40 ते 50 किलोमीटर पर्यंत जाऊ शकतो असं ट्विट हवामान शास्त्रज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर यांनी केलं. राज्यात सामान्यतः मोसमी पाऊस 7 जूनला दाखल होतो, पण यंदा केरळमध्ये मोसमी पाऊस उशिरानं दाखल झाला. आगामी वाटचालीसाठी पोषक वातावरण असल्याचं हवामान विभागाकडून सांगण्यात आलं. विद्यार्थ्यांना जशा पद्धतीने आपण चालू घडामोडींचा आढावा घेतला, पुन्हा भेटू या पुढील सत्रात. धन्यवाद.
नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम. मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं. चलिए बढ़ते हैं आज के अपडेट की ओर. आज की पहली अपडेट है, विश्व बालश्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया. संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में बाल श्रम की बुरी प्रथाओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाता है. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के खिलाफ इस वैश्विक मुद्दे से निपटने के लिए 2002 में इस दिन की शुरुआत की थी. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 160 मिलियन बच्चे अभी भी बाल श्रम में लगे हुए हैं. कुछ 5 साल से कम उम्र के हैं. 2020 की शुरुआत में 5 और उसमें से अधिक उम्र के 10 बच्चों में से एक दुनिया भर में बाल श्रम में शामिल था. विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 का विषय, सभी के लिए सामाजिक न्याय, बालाश्रम का अंत करे, यह है. अगली अपडेट शिखर सम्मेलन की ओर. कजाकिस्तान ने अस्ताना इंटरनेशनल फोरम की मेजबानी की. कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना ने 8 और 9 जून 2023 तक बहुप्रतीक्षित अस्ताना इंटरनेशनल फोरम की मेजबानी की, जिसमें विश्व नेताओं, नीति निर्माताओं और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों को मानवता के भविष्य को आकार देने के उद्देश्य से एक प्रेरणादायी बातचीत में शामिल होने के लिए एक साथ लाया गया. यह मंच विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों के नेताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए कजाकिस्तान द्वारा की गई पहलों में नवीनतम है. फोरम को राष्ट्रपति काजिम जोमार्त तोकायेव की पहल के तहत लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य जलवायु, खाद्य की कमी और ऊर्जा सुरक्षा पर वैश्विक चुनौतियों से निपटना है. अगली अपडेट अंतर्राष्ट्रीय के बारे में. नाइजीरिया बोला टिनबू ने राष्ट्रपति के रूप में पतली. देश को परेशान करने वाले निरंतर आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों को हल करने के दबाव के बीच राजनीतिक गॉडफादर के रूप में विख्यात बोला टिनबू को हाल ही में नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी. समारोह राजधानी अबुजा में ईगल स्क्वायर पर हुआ, जिसमें स्थानीय और विदेशी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे. 71 वर्षीय दक्षिणी ने इस साल फरवरी में हुए चुनाव में 88 लाख मतों के साथ जीत हासिल की और 80 वर्षीय महमूद बुहारी की जगह ली, जो ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी रहे हैं. अगली अपडेट रैंक की ओर. जनवरी से मार्च 2023 तक में भारत में शहरी बेरोजगारी घटकर 6.8% रह गई. श्रम बल संरक्षण के अनुसार जनवरी से मार्च 2023 तिमाही में शहरी बेरोजगारी दर में और गिरावट आई और लगातार 7वीं तिमाही में गिरावट आई. यह दर्शाता है कि शहरी श्रम बाजार महामारी के बाद रिकवरी रास्ते पर है. शहरी क्षेत्र में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में बेरोजगारी दर जनवरी मार्च से 2023 की तिमाही में घटकर 6.8% हो गई, जो आर्थिक गतिविधियों में मंदी के बारे में चिंताओं को दूर करती है. सर्वेक्षण की शुरुआत के बाद से यह सबसे कम तिमाही बेरोजगारी दर रही. अगली अपडेट रैंक की ओर. RBI की वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा, 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या में वृद्धि हुई. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2023 में 500 रुपए के लगभग 91,110 नकली नोटों का पता चला. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022-23 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में पकड़े गए कुल जाली भारतीय मुद्रा नोटों से 4.6% रिजर्व बैंक में और 95.4% अन्य बैंकों में पाए गए। बैंक ने उसी वर्ष 100 रुपए के 78,699 नकली नोटों और 200 रुपए के 27,258 नकली नोटों की सूचना दी। RBI ने वित्त वर्ष 2023 में 2,000 रुपए के 9,806 नकली नोट दर्ज की है। केंद्र सरकार ने 19 मई को घोषणा की थी कि 2,000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया जाएगा। अगले अपडेट बैंकिंग की ओर। SFB ने एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए IBM के साथ सहयोग किया। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ग्राहकों को एक सुरक्षित अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को डिजाइन और बचाने के लिए IBM कंसल्टिंग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों संस्थाओं के बीच सहयोग का उद्देश्य इक्विटास द्वारा पेश किया गए डिजिटल उत्पादों के साथ साथ इसकी सेवा पेशकशों को बढ़ावा देना है। यह डिजिटल फर्स्ट पीढ़ी के लिए अपने व्यवसाय को विकसित करता है। अगले विकास चरण के हिस्से के रूप में इक्विटास का लक्ष्य क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर के साथ अपनी आधुनिकीकरण यात्रा शुरू करना है। अगले अपडेट नियुक्ति की ओर। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वरिष्ठ प्रशासक प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अगले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में पद की शपथ दिलाई है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव पिछले साल दिसंबर में CVC सुरेश एन पटेल का कार्यकाल पूरा होने के बाद से ही कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे। श्रीवास्तव का प्रमुख प्रशासनिक पदों पर व्यापक करियर रहा है और उन्होंने RITES ने राइट्स में मुख्यतः सतर्कता अधिकारी और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के लिए संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक के रूप में भी काम किया है। अगली अपडेट नियुक्ति की ओर। न्यायमूर्ति राव ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। पदोन्नति से पहले वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमजद अतेशाम सैयद की सेवानिवृत्ति के बाद जनवरी से मुख्य न्यायाधीश का पद खाली था। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने शिमला में राजभवन में आयोजित एक संक्षिप्त शपथ ग्रहण समारोह में न्यायमूर्ति राव को पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। अगली अपडेट बैंकिंग की ओर। यस बैंक ने लॉन्च किया नया लोगो। अपनी नई ब्रांड पहचान का अनावरण करते हुए निजी ऋणदाता यस बैंक ने हाल ही में कंपनी का एक नया लोगो लॉन्च किया है और कहा है कि यह टैगलाइन लाइफ को बनाओ रीच के साथ एक एकीकृत अभियान शुरू करने के लिए तैयार है, जो एक पूर्ण समाधान प्रदाता होने के बैंक के मुख्य फोकस का प्रतिनिधित्व करता है। एक मीडिया विज्ञप्ति में बैंक ने कहा कि इसकी गतिशील नई पहचान ग्राहकों को उभरती जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप है और लोगों को प्रत्येक दिन को पूरी तरह से जीने में सक्षम बनाती है। अपनी ताज़ा पहचान के हिस्से के रूप में यस बैंक ने एक जीवंत नया लोगो लॉन्च किया है, जो बैंक के दृश्य DNA को आगे बढ़ाता है और उस पर निर्माण करता है। अगली अपडेट अंतर्राष्ट्रीय की ओर। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने शुरू किया हिंदी पाठ्यक्रम। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने हिंदी भाषा में अपना पहला ओपन एक्सेस कोर्स विकसित करने के लिए ब्रिटेन में भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ साझेदारी की है। जलवायु समाधान पाठ्यक्रम कुशल अनुवादकों की मदद से क्यूरेट किया गया है और यह भारत सरकार और विश्वविद्यालय के एडिनबर्ग जलवायु परिवर्तन संस्थान के बीच संयोग का परिणाम था। पाठ्यक्रम एडिनबर्ग जलवायु परिवर्तन संस्थान के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डेवरी सहित पुरस्कार विजेता जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन और वितरित किया गया है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मैं RJ उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।
हेलो लिसनर्स एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स। दिस इज योर RJ प्रियंका एंड विदाउट एनी फर्दर डिले वी बिगिन आवर टुडेज एपिसोड विद आवर वेरी फर्स्ट डेली अपडेट विच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इम्पॉर्टेंट डे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 12th June. Every year on June 12th, the United Nations observes a World Day Against Child Labor to draw attention to the cruel practices of child employment around the world. The International Labour Organization established this day in 2002 to address the global issue of child labour. According to the UN, 160 million children, some as young as 5, are still involved in child work. At the start of 2020, 1 out of every 10 children aged 5 and up was engaged in child labour around the world. The theme for World Day Against Child Labour 2023 is Social Justice for All, End Child Labour. Now let's move forward to our second daily update, which belongs to the category of summits and conferences. Kazakhstan hosted Astana International Forum. From 8th to 9th June 2023, the bustling Kazakh capital Astana held the highly anticipated Astana International Forum, AIF, bringing together world leaders, policy makers and important figures from numerous fields to engage in an exciting dialogue aimed at molding humanity's future. The forum is the latest in Kazakhstan's series of endeavors to enhance interaction among leaders from diverse regions and industry. The forum was established at the request of President Kasym-Jomart Tokayev to address global concerns such as climate change, food scarcity and energy security. Now let's move forward to our third daily update, which belongs to the category of international. Nigeria, Bola Tinubu sworn in as president. Sometimes referred to as a political godfather, Bola Tinubu was sworn in as Nigeria's next president under mounting pressure to address the country's persistent economic and security problems. The inauguration took place in the capital Abuja in Eagle Square with local and foreign dignitaries in attendance. The 71-year-old southerner won the elections that were held in February this year with 8.8 million votes, succeeding the 80-year-old Muhammadu Buhari, who is also a member of the All Progressives Congress Party, APC. Now let's move forward to our fourth daily update, which belongs to the category of Rank and Report. Urban unemployment in India declines to 6.8% in January to March 2023 quarter. According to the periodic labor force survey, the urban unemployment rate fell further in the January to March 2023 quarter and fell for the seventh consecutive quarter, demonstrating that the urban labor market is on the mend following the pandemic. The unemployment rate in current weekly status CWS for those aged 15 and up in metropolitan areas fell to 6.8% from January to March 2023, despite concerns about a slowdown in economic activity. This was the lowest quarterly unemployment rate since the survey's start. Now let's move forward to our fifth daily update, which belongs to the category of Rank and Report. Rise in fake rupees 500 notes detected in India, RBI annual report reveals. According to the Reserve Bank of India's annual report, approximately 91,110 pieces of counterfeit rupees 500 notes were discovered in FY23. The Reserve Bank discovered 4.6% of all fake Indian currency notes, FICNs, reported in the banking sector during 2022-23, whereas other banks detected 95.4%, according to the report. In the same year, the Central Bank reported 78,699 fraudulent rupees 100 notes and 27,258 fake rupees 200 notes. In fiscal year 23, the RBI detected 9,806 counterfeit rupees 2,000 notes. On May 19, the national government ordered the withdrawal of rupees 2,000 notes from circulation. Now let's move forward to our sixth daily update, which belongs to the category of banking. Equitas SFB collaborates with IBM to build a digital banking platform. Equitas Small Finance Bank has inked an agreement with IBM Consulting to design and build a digital banking platform that would provide consumers with a secure experience, according to the bank. The collaboration between the two institutions intends to strengthen Equitas' digital products as well as the service offerings as the bank adapts its operations for a digital first generation, according to a new statement from the bank. Equitas intends to begin its modernization journey with a cloud-native platform architecture as part of its next growth phase. Now let's move forward to our seventh daily update, which belongs to the category of appointment. Praveen Kumar Srivastava sworn in as Central Vigilance Commissioner. President of India Draupadi Murmu has sworn in Veteran Administrator Praveen Kumar Srivastava as the next Central Vigilance Commissioner. Praveen Kumar Srivastava was already working in the capacity as Acting Central Vigilance Commissioner, CVC, following the completion of tenure of incumbent CVC Suresh N. Patel in December last year. Srivastava has substantial experience in key administrative positions, including Chief Vigilance Officer in RITES and Joint Secretary and Mission Director for the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, JNNURM. Now let's move forward to our 8th daily update, which belongs to the category of appointment. Justice Rao sworn in as Himachal Pradesh High Court CJ. Justice M.S. Ramchandra Rao has recently sworn in as Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court. He was a judge of the Punjab and Haryana High Court prior to his elevation. Since January, when Chief Justice Amjad Ehtisham Sayyed retired, the office of Himachal Pradesh High Court Chief Justice has been vacant. At a brief ceremony at Shimla's Raj Bhavan, Governor Shiv Pratap Shukla administered the oath of office to Justice Rao. Chief Minister Sukhvinder Sukhu and opposition leader Jairam Thakur were also present. Now let's move forward to our 9th daily update, which belongs to the category of banking. Yes Bank launched new logo. Private lender Yes Bank has recently released a new logo and stated it is ready to roll out an integrated campaign with the phrase Life Ko Banao Rich, which highlights the bank's primary goal of being a comprehensive solution provider. According to a press statement, the bank's dynamic new brand is intended to resonate with clients' growing needs and aspirations, allowing them to live each day to the fullest. Yes Bank has released a vivid new logo as part of its revamped identity, which carries forward and expands on the bank's visual DNA. Now let's move forward to the last and 10th daily update for today, which belongs to the category of international. University of Edinburgh launches Hindi course. The University of Edinburgh has collaborated with the Indian Consulate in the United Kingdom to provide its open first access course in Hindi. The Climate Solutions course was created with the assistance of competent translators as a result of a collaboration between the Indian government and the University of Edinburgh's Edinburgh Climate Change Institute. The program is planned and conducted by award-winning climate change specialists, including Professor Dave Ray, Executive Director of the Edinburgh Climate Change Institute, ECCI. So this update brings us to the end of today's episode of Daily Current Affairs Update. Please stay tuned for more learning. This is your RJ Priyanka signing off for the day. Thank you. Hello listeners, and welcome to our English language program Daily Current Affairs Update. This is your RJ Priyanka, and without any further delay, we begin our today's episode with our very first daily update, which belongs to the category of summits and conferences. G20 Health Working Group meeting held in Hyderabad. The G20 Health Working Group, HWG, had its third meeting in Hyderabad from June 4th to 6th. The third HWG meeting included both a main event and a side session focused on collaboration on research and development in medical countermeasures, MCMs. In addition to India, participants from 19 G20 member countries, 10 invited countries and 22 international organizations attended the third HWG meeting. The health priorities were outlined and debated in depth at the HWG sessions in Thiruvananthapuram and Goa in January and April of this year, respectively. Now let's move forward to our second daily update, which belongs to the category of obituaries. Malayalam actor Kollam Sudhi dies in car accident. Kollam Sudhi, a Malayalam actor, has died. The actor, most known for his comedic appearances, died in an automobile accident at the age of 39. Kollam was on the road with artists Ullas Arur, Binu Adimali and Mahesh. Sudhi was well known for his comedic part in several television shows and has also been in few films. He debuted in the industry with the film Kanthari in 2015. Kattappanna, Kuttanadan, Thetta Rapai, Vaka Thiriv, An International Local Story, Keshu E. Dhinnathan, Escape and Swaragathil Katturam were among his subsequent films. Now let's move forward to our third daily update, which belongs to the category of books. Fire Prevention, Life Safety and Fire Protection, Book to Prevent Fire Disasters, launched. Dilip Patel, former principal of MS University's Polytechnic College, has published a book titled Fire Prevention, Life Safety and Fire Protection, which includes basic recommendations on how to protect yourself from fire disasters. This book is based on the Gujarat Comprehensive Development Control Regulations, the Gujarat Fire Act 2013, which was amended in 2021, and the National Building Code, which has also now become an integral part of the Gujarat Fire Act, said Patel, who was appointed as a fire safety officer by the Gujarat government in 2021. Now let's move forward to our fourth daily update, which belongs to the category of national. Government approves digital communication framework between banks and CEIB. The center has approved a rapid digital reporting and communication mechanism to address loan defaults of more than rupees 50 crore. According to reports, the Union Government has put in place a digital mechanism under which the Central Economic Intelligence Bureau, CEIB, will send a report digitally regarding borrowers to PSU banks for loan amount of Rs. 50 crore or higher at the pre-approval stage within 15 days of request, while ending the paper-based communication system. The new system was approved by the Union Finance Minister after extensive engagement with all stakeholders. Now let's move forward to our fifth daily update, which belongs to the category of schemes and committees. Mukesh Ambani joins COP28 Advisory Committee to address climate crisis. Mukesh Ambani, Chairman and Managing Director of Reliance Industries, has been nominated to the Advisory Committee to the President of the 28th Conference of the Parties, COP28, to the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. Apart from Sunita Narayan, Director General of the Center for Science and Environment, Mukesh Ambani is the only Indian on the Advisory Committee to the President of COP28. The UAE Advisory Committee for COP28 brings together climate expertise from thought leaders from six continents. Now let's move forward to our sixth daily update, which belongs to the category of banking. RBI imposes Rs 84.50 lakh penalty on Central Bank of India for non-compliance with fraud reporting norms. The Reserve Bank of India, RBI, announced a penalty of Rs 84.50 lakh against the Central Bank of India, the bank, for failing to comply with certain requirements of regulations related to fraud classification and reporting. The Reserve Bank conducted a required inspection to undertake a supervisory examination of the bank's financial status as of March 31, 2021. According to the reports, the public sector lender neglected to notify some accounts as fraudulent to the RBI within 7 days following the Joint Lenders Forum JLF resolution to designate the accounts fraudulent. Now let's move forward to our seventh daily update, which belongs to the category of appointment. CAG Girish Chandra Murmu re-elected external auditor of WHO for 4-year term. Girish Chandra Murmu, India's Controller and Auditor General CAG, has been re-elected as the World Health Organization's WHO external auditor for a 4-year term from 2024 to 2027. He has held the job for 4 years from 2019 to 2023. The officer of the Controller and Auditor General CAG said in a statement that the election took place at the 76th World Health Assembly in Geneva, where the CAG of India was re-elected in the first round of voting with 114 out of 156 votes. Now let's move forward to our eighth daily update, which belongs to the category of Rank and Report. Health Index report of COVID year, Kerala and Tamil Nadu top performers. In Niti Aayog's annual health index for the COVID-19 pandemic year of 2020-21, Kerala, Tamil Nadu and Telangana emerged as the top performing states among the big states. Tripura did well in the smaller states category and Delhi ranked last among the union territories. The Niti Aayog Health Index, created in 2017, evaluates the performance of states and union territories using 24 health performance metrics. The Comprehensive Health Index was developed in collaboration with the Union Health Ministry and the World Bank. Now let's move forward to our ninth daily update, which belongs to the category of miscellaneous. Sachin Tendulkar now Smile Ambassador for Maharashtra Government. Sachin Tendulkar has been chosen the Smile Ambassador for Maharashtra's Swachh Mukh Abhiyan and Oral Hygiene Initiative. Tendulkar signed a Memorandum of Understanding MOU with Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis. For the next 5 years, the batting legend will serve as the campaign's brand ambassador. The Indian Dental Association's Swachh Mukh Abhiyan is a countrywide program to enhance oral health and hygiene to educate people about its relevance. Now let's move forward to the 10th and last daily update for today, which belongs to the category of appointment. Anshumali Rastogi appointed as India's representative to Global Civil Aviation Organization. According to a personnel ministry directive, senior bureaucrat Anshumali Rastogi has been named India's representative to the International Civil Aviation Organization ICAO Council in Montreal, Canada. Rastogi, a 1995 batch officer of the Indian Railway Service of Mechanical Engineers IRSME, has been appointed for 3 years in place of Shefali Juneja. Hemang Jani, Secretary of the Capacity Building Commission, has been appointed for 3 years as Senior Advisor to the Executive Director of the World Bank in Washington, D.C. So with this update, we have now come to an end of today's episode of Daily Current Affairs Update. Please stay tuned for more learning. This is your RJ Priyanka signing off for the day. Thank you.
Hello listeners and welcome to our English language program, Daily Current Affairs Updates. This is your RJ Priyanka, and without any further delay, we begin our today's episode with our very first daily update, which belongs to the category of Important Day. World Day Against Child Labor, 12th June. Every year on June 12th, the United Nations observes a World Day Against Child Labor to draw attention to the cruel practices of child employment around the world. The International Labor Organization established this day in 2002 to address the global issue of child labor. According to the UN, 160 million children, some as young as 5, are still involved in child work. At the start of 2020, 1 out of every 10 children aged 5 and up was engaged in child labor around the world. The theme for World Day Against Child Labor 2023 is Social Justice for All, End Child Labor. Now let's move forward to our second daily update, which belongs to the category of Summits and Conferences. Kazakhstan hosted Astana International Forum. From 8th to 9th June 2023, the bustling Kazakh capital Astana held the highly anticipated Astana International Forum, AIF, bringing together world leaders, policymakers, and important figures from numerous fields to engage in an exciting dialogue aimed at molding humanity's future. The forum is the latest in Kazakhstan's series of endeavors to enhance interaction among leaders from diverse regions and industry. The forum was established at the request of President Kasym-Jomart Tokayev to address global concerns such as climate change, food scarcity, and energy security. Now let's move forward to our third daily update, which belongs to the category of International. Nigeria, Bola Tinubu sworn in as president. Sometimes referred to as a political godfather, Bola Tinubu was sworn in as Nigeria's next president under mounting pressure to address the country's persistent economic and security problems. The inauguration took place in the capital Abuja in Eagle Square with local and foreign dignitaries in attendance. The 71-year-old southerner won the elections that were held in February this year with 8.8 million votes, succeeding the 80-year-old Muhammadu Buhari, who is also a member of the All Progressives Congress Party, APC. Now let's move forward to our fourth daily update, which belongs to the category of Rank and Report. Urban unemployment in India declines to 6.8% in January to March 2023 quarter. According to the periodic labor force survey, the urban unemployment rate fell further in the January to March 2023 quarter and fell for the 7th consecutive quarter, demonstrating that the urban labor market is on the mend following the pandemic. The unemployment rate in current weekly status CWS for those aged 15 and up in metropolitan areas fell to 6.8% from January to March 2023, despite concerns about a slowdown in economic activity. This was the lowest quarterly unemployment rate since the survey's start. Now let's move forward to our fifth daily update, which belongs to the category of Rank and Report.
Rise in fake rupees 500 notes detected in India, RBI annual report reveals. According to the Reserve Bank of India's annual report, approximately 91,110 pieces of counterfeit rupees 500 notes were discovered in FY23. The Reserve Bank discovered 4.6% of all fake Indian currency notes, FICNs, reported in the banking sector during 2022-23, whereas other banks detected 95.4%, according to the report. In the same year, the Central Bank reported 78,699 fraudulent rupees 100 notes and 27,258 fake rupees 200 notes. In fiscal year 23, the RBI detected 9,806 counterfeit rupees 2,000 notes. On May 19, the national government ordered the withdrawal of rupees 2,000 notes from circulation. Now let's move forward to our sixth daily update, which belongs to the category of banking. Equitas SFB collaborates with IBM to build a digital banking platform. Equitas Small Finance Bank has inked an agreement with IBM Consulting to design and build a digital banking platform that would provide consumers with a secure experience, according to the bank. The collaboration between the two institutions intends to strengthen Equitas digital products as well as the service offerings as the bank adapts its operations for a digital first generation, according to a new statement from the bank. Equitas intends to begin its modernization journey with a cloud-native platform architecture as part of its next growth phase. Now let's move forward to our seventh daily update, which belongs to the category of appointment. Praveen Kumar Srivastava sworn in as Central Vigilance Commissioner. President of India Draupadi Murmu has sworn in Veteran Administrator Praveen Kumar Srivastava as the next Central Vigilance Commissioner. Praveen Kumar Srivastava was already working in the capacity as Acting Central Vigilance Commissioner, CVC, following the completion of tenure of incumbent CVC, Suresh N. Patel, in December last year. Srivastava has substantial experience in key administrative positions, including Chief Vigilance Officer in RITES and Joint Secretary and Mission Director for the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, JNNURM. Now let's move forward to our eighth daily update, which belongs to the category of appointment. Justice Rao sworn in as Himachal Pradesh High Court CJ. Justice M.S. Ramchandra Rao has recently sworn in as Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court. He was a judge of the Punjab and Haryana High Court prior to his elevation. Since January, when Chief Justice Amjad Ehtisham Sayyed retired, the office of Himachal Pradesh High Court Chief Justice has been vacant. At a brief ceremony at Shimla's Raj Bhavan, Governor Shiv Pratap Shukla administered the oath of office to Justice Rao. Chief Minister Sukhvinder Sukhu and opposition leader Jairam Thakur were also present. Now let's move forward to our ninth daily update, which belongs to the category of banking. Yes Bank launched new logo. Private lender Yes Bank has recently released a new logo and stated it is ready to roll out an integrated campaign with the phrase Life Ko Banao Rich, which highlights the bank's primary goal of being a comprehensive solution provider. According to a press statement, the bank's dynamic new brand is intended to resonate with clients' growing needs and aspirations, allowing them to live each day to the fullest. Yes Bank has released a vivid new logo as part of its revamped identity, which carries forward and expands on the bank's visual DNA. Now let's move forward to the last and 10th daily update for today, which belongs to the category of international. University of Edinburgh launches Hindi course. The University of Edinburgh has collaborated with the Indian Consulate in the United Kingdom to provide its open first access course in Hindi. The Climate Solutions course was created with the assistance of competent translators as a result of a collaboration between the Indian government and the University of Edinburgh's Edinburgh Climate Change Institute. The program is planned and conducted by award-winning climate change specialists, including Professor Dave Ree, Executive Director of the Edinburgh Climate Change Institute, ECCI. So this update brings us to the end of today's episode of Daily Current Affairs Update. Please stay tuned for more learning. This is your RJ Priyanka signing off for the day. Thank you.
नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट।
मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक हैदराबाद में आयोजित। G20 स्वास्थ्य कार्ड समूह HWG की तीसरी बैठक 4 से 6 जून तक हैदराबाद में हुई। तीसरी HWG बैठक में एक मुख्य कार्यक्रम और एक साइड इवेंट भी था, जिसमें मेडिकल काउंटर उपायों MCM में अनुसंधान और विकास पर सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया था। भारत के अलावा 19 G20 सदस्य राज्यों, 10 आमंत्रित देशों और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी तीसरी HWG बैठक में भाग लिया। इस साल जनवरी और अप्रैल में क्रमशः तिरुवनंतपुरम और गोवा में हुई HWG बैठकों के दौरान स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को पेश किया गया और उन पर विस्तार से चर्चा की गई। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। मलयालम अभिनेता कोल्लम सुधी की कार दुर्घटना में मौत। मलयालम अभिनेता कोल्लम सुधी का निधन हो गया है। अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले अभिनेता का 39 साल की उम्र में एक कार दुर्घटना के बाद निधन हो गया। कोल्लम साथी कलाकारों उल्लास अरूर, बीनू आदिमाली और महेश के साथ यात्रा कर रहे थे। सुधी को विभिन्न टेलीविजन कार्यक्रमों में उनकी कॉमेडी भूमिकाओं के लिए जाना जाता था और उन्होंने कुछ फिल्मों में भी अभिनय किया है। वह 2015 में फिल्म कंथरी से इंडस्ट्री में शामिल हुए थे। उन्होंने कटपना, कुट्टानादन, थेट्टा रापई, वाका थिरिव और इंटरनेशनल लोकल स्टोरी, केशु ई डिहिन नाथन, एस्केप और स्वर्गा थिले कुटुरुम जैसी फिल्मों में अभिनय किया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है किताबें। आग आपदाओं को रोकने के लिए फायर प्रिवेंशन, लाइफ सेफ्टी एंड फायर प्रोटेक्शन पुस्तक लॉन्च की गई। MS विश्वविद्यालय के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पूर्व प्राचार्य दिलीप पटेल ने फायर प्रिवेंशन, लाइफ सेफ्टी एंड फायर प्रोटेक्शन नामक एक पुस्तक लॉन्च की है, जिसमें आग आपदाओं से खुद को बचाने के बारे में सरल सुझावों का उल्लेख किया गया है। यह पुस्तक गुजरात व्यापक विकास नियंत्रण विनियमों, गुजरात अग्नि अधिनियम 2013 पर आधारित है, जिसे 2021 में संशोधित किया गया था, और राष्ट्रीय भवन संहिता, जो अब गुजरात अग्नि अधिनियम का एक अभिन्न अंग बन गई है, पटेल ने कहा, जिन्हें 2021 में गुजरात सरकार द्वारा अग्नि सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। सरकार ने बैंकों और CEIB के बीच डिजिटल संचार ढांचे को मंजूरी दी। केंद्र ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों पर चूक को रोकने के लिए एक त्वरित डिजिटल रिपोर्टिंग और संचार तंत्र को मंजूरी दे दी है। खबरों के अनुसार केंद्र सरकार ने कागज आधारित संचार प्रणाली को समाप्त करते हुए अब एक डिजिटल तंत्र स्थापित किया है, जिसके तहत केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो CEIB अनुरोध के 15 दिनों के भीतर पूर्व अनुमोदन चरण में PSU बैंकों को 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक की ऋण राशि के लिए उधारकर्ताओं के बारे में डिजिटल रूप से एक रिपोर्ट भेजेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सभी हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद नई प्रणाली को मंजूरी दी थी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। मुकेश अंबानी जलवायु संकट से निपटने के लिए COP28 सलाहकार समिति में शामिल हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 के 28वें सत्र के अध्यक्ष की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। COP28 के अध्यक्ष की सलाहकार समिति में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण के अलावा मुकेश अंबानी एकमात्र भारतीय हैं। COP28 UAE सलाहकार समिति 6 महाद्वीपों के देशों के विचारक नेताओं की जलवायु विशेषज्ञता को एक साथ लाती है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे छठवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। RBI ने धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मानदंडों का पालन न करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 84.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने कहा कि उसने धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक पर 84.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 2021 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था। रिपोर्ट की जांच से पता चला कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक संयुक्त ऋणदाता मंच JLF के द्वारा खातों को धोखाधड़ी घोषित करने के फैसले से 7 दिनों के भीतर RBI को धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट करने में विफल रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू 4 साल के लिए कार्यकाल के लिए WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुने गए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुना गया है। वह 2019 से 2023 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर रहे हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि चुनाव जिनेवा में 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में हुआ, जहां भारत के CAG को पहले दौर के मतदान में ही 156 में से 114 मतों के साथ फिर से चुना गया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। कोविड वर्ष की स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट, केरल और तमिलनाडु शीर्ष प्रदर्शन करने वाले। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना बड़े राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे। त्रिपुरा ने छोटे राज्यों की श्रेणी में अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि दिल्ली 2020-21 के कोविड-19 महामारी के वर्ष के लिए नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे नीचे स्थान पर रहा। नीति आयोग 2017 में शुरू किया गया स्वास्थ्य सूचकांक 24 स्वास्थ्य प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करता है। नीति आयोग ने व्यापक स्वास्थ्य सूचकांक जारी करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व बैंक के साथ सहयोग किया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। सचिन तेंदुलकर अब महाराष्ट्र सरकार के लिए बने स्माइल एम्बेसडर। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र के स्वच्छमुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तेंदुलकर के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। यह दिग्गज बल्लेबाज अगले 5 साल तक अभियान का ब्रांड दूत रहेंगे। स्वच्छमुख अभियान इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा मौखिक स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार और लोगों को इसके महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। अंशुमाली रस्तोगी को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। वरिष्ठ नौकरशाह अंशुमाली रस्तोगी को कनाडा के मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की परिषद में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। बयान में कहा गया है कि भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियर सेवा IRSME के 1995 बैच के अधिकारी रस्तोगी को शेफाली जुनेजा के स्थान पर 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। क्षमता निर्माण आयोग के सचिव हेमांग जानी को 3 साल के लिए विश्व बैंक Washington DC के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नामित किया गया है। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूं। धन्यवाद।